अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परित्यक्त गुणः सम्यक् दर्शनः विशद आशयः विशदाशयः शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यं अश्नुते कैवल्यमश्नुते। परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शन विशदाशयः शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शन विशदाशयः शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शन विशदाशयः शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शन विशदाशयः शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शन विशदाशयः शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शन विशदाशयः शान्ति मे समवस्थानं
माता जी
परित्यक्त गुण जो गुणों से विरक्त है, सम्यक सम दर्शन जिसकी दृष्टि विशद अकलुषित आशय जिसका मन या हृदय शांतिम शांति में मेरा समवस्थानम समान पद ब्रह्म आत्मा कैवल्यम भौतिक कल्मश से मुक्ति अश्नुते प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जब समस्त भौतिक कल्मशों से हृदय शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तुओं को समान रूप में देख सकता है। जीवन के इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद को सच्चिदानंद विग्रह रूप में प्राप्त होता है। तात्पर्य, मायावादी कैवल्य संबंधी विचार वैष्णवों से भिन्न है। मायावादी सोचता है कि जैं ही कोई समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है वह परमेश्वर में तदाकार हो जाता है। वैष्णव चिंतक कि कैवल्य संबंधी विचारधारा भिन्न है। वह अपनी तथा श्री भगवान दोनों की स्थितियों को समझता है। अकलुषित अवस्था में जीवात्मा अपने को परमात्मा का नित्य दास मानता है जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। यह पद सरलता से प्राप्त हो जाता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जब कोई भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त रहता है तो उसे तुरंत ही दिव्य कैवल्य पद अथवा ब्रह्म पद प्राप्त होता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचन समाज में हो रहा है और इसके वक्ता हैं कौन? श्री माधव। इस श्लोक को कौन बोल रहे हैं? प्रवचन कौन कर रहे हैं? नारायण कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। और किससे प्रवचन किया जा रहा है? मुख्य श्रोता कौन है? पृथु महाराज। क्या जरूरत पड़ गई प्रवचन करने की? भगवान क्यों प्रवचन कर रहे हैं? आए पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं क्षमा करने के लिए। इंद्र गलती किए हैं, घोड़ा चुरा लिए हैं, कई एक बार घोड़ा चुराए, यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और भगवान समझा रहे हैं पृथु महाराज को। और समझाने में कई एक बात बोले हैं। सबसे पहले तो यह कहे कि यज्ञ बंद कर दीजिए। यज्ञ में उनका संकल्प था कि 100 यज्ञ पूरा करेंगे। अभी 100वां यज्ञ नहीं हुआ था, 99 यज्ञ चल रहा था, उसी समय कह दे कि यज्ञ बंद कर दीजिए। और भगवान यज्ञ बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इस विषय पर हम लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं। कई एक कारण भगवान दे रहे हैं, लेकिन उन सब कारणों के साथ ही एक कारण भगवान यह दे रहे हैं कि दैव के विधान से किसी कार्य में बहुत बाधा आवे और जो व्यक्ति उस कार्य को फिर भी पूरा करने के फेरे में रहता है तो मनोतिरुष्टम विसते तमोन्धम, मन रुष्ट हो जाता है। यही शब्द है कि मन रुष्ट हो जाता है और मोह में पड़ जाता है। तो यहां भगवान यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मनोतिरुष्ट है, मन रुष्ट हो जाता है। और कल के श्लोक में आप सुने कि भगवान बोल रहे हैं कि मनोराजन प्रसिद्धति, कुछ ऐसा साधन है कि जिससे करने से मन प्रसन्न हो जाता है। तो दो स्थिति है, एक स्थिति में मन रंज हो जाता है, एक स्थिति में मन प्रसन्न हो जाता है। मन रंज क्यों होता है? जब हमारे मन में कामना का उदित होता है, कोई इच्छा रहती है, प्रबल इच्छा रहती है या कोई एक इच्छा रहती है तो मन रंज हो जाता है, रुष्ट हो जाता है। रुष्ट सब समझते हैं ना। और जब व्यक्ति निराश ही बिना फल की आकांक्षा का अपने स्वधर्म का आचरण करता है तो मन प्रसिद्धति, मन प्रसन्न होता है। एक स्थिति में मन रंज हो रहा है, एक स्थिति में प्रसन्न हो रहा है। वे प्रसन्न होने से क्या लाभ हो जाएगा? साधन बतला रहे हैं कि यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धयान्वित, श्रद्धा से युक्त हो करके रोज नित्य अपने धर्म में कोई स्थित है वर्णाश्रम के अनुसार, ये जो भी अपना धर्म है और उस धर्म में स्थित रह करके भगवान की भक्ति कर रहा है या धर्म का आचरण कर रहा है, तो सन कही धीरे धीरे उसका मन प्रसन्न हो जाता है। वे मन प्रसन्न हो जाएगा तो क्या लाभ मिल जाएगा? थोड़ा इस स्थिति पर विचार कीजिए कि मन रंज है तो उससे क्या घाटा है और मन प्रसन्न हो जाएगा तो इससे लाभ क्या है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि कोई फीस्ट तैयार है, कभी कभी घर में पकवान बनता है और तब तक किसी कारण से कोई रुष्ट हो गया, उसका मन खिन्न हो गया, रंज हो गया। उस समय व्यक्ति अब रंज हो गया तो देने पर भी पकवान नहीं खाता है, भोजन छोड़ देता है और प्रसन्न रहता है तो खाता है। जब मान लीजिए कि मन रंज है, व्यथित है, दुखी है, किसी को खूब पिटाई किए हैं, खूब उसको डंडा लगा है, चोट लगा है, शरीर में बहुत दर्द है और उसको कोई पकवान दे दीजिए, उसको खाने में आनंद आएगा? नहीं आएगा। और जब स्वस्थ है तो आनंद पूर्वक खाएगा। यदि हमारा मन रुष्ट है तो आस्वादन नहीं कर पाता है, ब्रह्म का आस्वादन नहीं कर पाता है, और मन प्रसन्न है तो ब्रह्म का आस्वादन करता है। यह अंतर है। और मन रुष्ट कैसे होता है? ऐसा शास्त्र में लिखा गया है, वासना है, कामना है, तो यह बाण के समान है। जब वासना मन को विधता है तो मन बड़ा व्यथित रहता है और भगवान का आस्वादन नहीं कर पाता, उनके रूप गुण का आस्वादन नहीं कर पाता है। और ये परित्यक्त गुण है, या जब नहीं निराशी ही, जब मन में कामना नहीं है, वासना नहीं है तो मन खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में वह ब्रह्म का आस्वादन कर सकता है। जब तक शांति नहीं है तब तक ब्रह्म का आस्वादन नहीं किया जा सकता, और शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक वैराग्य नहीं है। तो ये जो भगवान का प्रवचन चल रहा है, तो पृथ्वी महाराज को एक स्थिति में कह रहे हैं कि देखिए अब आगे आप प्रयास करेंगे तो बहुत घाटा समाज को हो रहा है, इस अर्थ में कि जितना आप प्रयास करते जाएंगे इंद्र मानने वाला नहीं है, वो और पाखंड धर्म बढ़ता जाएगा, समाज को भी घाटा लग रहा है, पाखंड धर्म बढ़ रहा है। और थोड़ा तत्व से विचार कीजिए, वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, और भगवान का ही एक रूप, भगवान का ही अवतार असंतुष्ट हो रहा है, और फिर यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि देखिए इंद्र गलती किया, लेकिन इस समय क्षमा चाहता है। देवताओं की यही विशेषता है कि गलती करते हैं लेकिन तुरंत अपने जगह पर आ जाते हैं। आप इंद्र के जीवन में देखेंगे वो कई एक बार गलती किए हैं, लेकिन थोड़े देर के बाद फिर सही जगह पर, यही उनकी विशेषता है। वो घोड़ा तो चुराए, कई एक बार चुराए, यज्ञ में विघ्न डाले, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह अब क्षमा चाहते हैं तो इनको क्षमा कर दीजिए। ये प्रश्न होगा कि ये गलती किए हैं, हमारा अपमान किया है, बाधा डाला है, कैसे इसको क्षमा कर दें। ओ भगवान, अब इस बात की स्थापना के लिए कि जो बड़े लोग होते हैं तो मान अपमान की भावना से ही दूर होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति है वो कभी किसी भी स्थिति में अपमान बोध नहीं करता है, अपमान महसूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि ये मान अपमान की जो भावना है यह देहात्म धारणा पर आधारित है, इसका आधार दैहिक धारणा है। और देह की स्थिति क्या है? अविद्या काम कर्म भी आरब्ध इति, देह का जन्म हुआ है, देह की उत्पत्ति हुई है अविद्या काम और कर्म, यह सीक्वेंस है, यह क्रम है। अज्ञान के चलते, मतलब अपने स्वरूप के अज्ञान के चलते मन में कामना उदित होती है, कामना के चलते व्यक्ति कर्म करता है, और कर्म का फल यह शरीर है। जो भी शरीर व्यक्ति प्राप्त किया है उसका कारण कर्म है, और कर्म का कारण वासना है, और वासना का कारण अविद्या है। तो ये शरीर तो अविद्या पर टिका हुआ है, जिसको ज्ञान हो जाता है तो वह इस अविद्या पर आधारित चीज का महत्व नहीं देता है। यही नात्मा कलेवरम, ये समझाने लगे कि आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है, दोनों में बहुत भारी फर्क है। एक श्लोक में 9 गुण दिखलाया गया है कि कैसे आत्मा शरीर से भिन्न है। आप उन श्लोकों को सुने तो भगवान यह स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा शरीर से बिल्कुल पृथक है, अलग है, और शरीर अज्ञान पर आधारित है, अज्ञान ही इसका मूल है, और इसी से मान अपमान का बोध होता है। तो आप जैसे विद्वान व्यक्ति भी, ज्ञानी व्यक्ति भी, यदि इसे दैहिक धारणा में ही रहेंगे तब तो सब सुना सुनाया शास्त्र अध्ययन सब व्यर्थ गया। तो आप इस धारणा से ऊपर उठ जाइए। और वे बतलाने लगे कि जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है तो वह तो भगवान का आश्रित होता है और इस मान अपमान से प्रभावित नहीं होता है, इस शरीर में रहते हुए भी मान अपमान से प्रभावित नहीं होता है। तो एक प्रश्न होगा कि ये स्थिति आएगी कैसे? तो जैसा कल आप सुने, यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धयान्वित, श्रद्धापूर्वक अपने स्थिति में रह करके अपने धर्म का पालन करता है तो मन प्रसिद्धति, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न हो गया तो परित्यक्त गुण, मन प्रसन्न है और परित्यक्त गुण विषय का त्याग कर देता, और विषय का त्याग किया तो शांतिम अश्नुते, उसको शांति प्राप्त होती है। और शांति का स्वरूप क्या है, किस रूप में वह शांति प्राप्त करता है, तो इसको कह रहे हैं कि समवस्थानम ब्रह्म कैवल्य मश्नुते। उस शांति के लिए तीन शब्द दे रहे हैं, मे समवस्थानम, मेरा जैसा स्थान, ब्रह्म कैवल्य का भोग करता है, उसका आस्वादन करता है। जैसे मैं प्रारंभ में कहा कि मन यदि रुष्ट है तो आस्वादन नहीं कर पाएगा, मन प्रसन्न हो गया, शांति अनुभव कर रहा है तो ब्रह्म का आस्वादन करता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मायावादी लोग हैं उनकी ब्रह्म की धारणा, कैवल्य की धारणा अलग है और वैष्णवों की धारणा अलग है। तो इस श्लोक में मूल वाक्य यही है कि शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्य मश्नुते। जब व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है तो वह सम्यक दर्शन अपने स्वरूप को देखने लगता है, उसका अनुसंधान भली भांति करता है और उसका मन खिल जाता है। इस अवस्था में वह शांति का भोग करता है। और शांति के विषय में कह रहे हैं कि मे समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते। तो शांति किस रूप में भोग करता है, मुक्ति किस रूप में प्राप्त करता है, इसको दो लेवल पर समझा जा सकता है। भगवान गीता में कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अब व्यक्ति की जैसी स्थिति रहती है, जो चिंतन करता रहता है, जो मन में बसा रहता है, तो उसी के अनुसार उसके आगे की गति होती है। तो जब व्यक्ति ब्रह्म का चिंतन करता है तो ब्रह्म सुख भोगता है, और यदि समवस्थानम एक स्थिति दे रहे हैं कि ये जो ब्रह्म भोग की स्थिति है तो इसका दो भेद किया जा सकता है। एक भेद को कह रहे हैं कि फलद्वयम पुरुषोत्तम लीलायम प्रवेश अक्षर ब्रह्म प्राप्तिश्च। यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे और पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे, और निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं तो निर्विशेष ब्रह्म का सुख, ब्रह्मानंद का सुख मिलेगा। और सुख दो प्रकार बतला रहे हैं, एक भगवान के लीला में प्रवेश करके भगवान के दर्शन का, उनके अनुभव का, उनके स्पर्श का, उनके शब्द सुनने का, यह सुख प्राप्त करेंगे। और यदि निर्विशेष रूप का चिंतन कर रहे हैं तो ब्रह्मानंद का आस्वादन करेंगे। तो दो रूप में शांति का वर्णन कर रहे हैं। तो मायावादी लोग निर्विशेष ब्रह्म का आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं तो मैं समवस्थानम, इसका अर्थ है कि जैसा मेरा स्थान है या मेरा रूप है तो उसी रूप में स्थित होकर के वे हमारा अनुभव करते हैं, कैवल्य का आस्वादन करते हैं। तो इसमें जो शब्द है सम्यक दर्शन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भगवान का ध्यान कर रहा है या श्री विग्रह का खूब बढ़िया से दर्शन कर रहा है तो भगवान के लीला में प्रवेश कर जाएगा। और रोज भगवान के माधुर्य का, सौकुमार्य का आस्वादन करके सुखी रहेगा। भक्तों के लिए यही सुलभ है, यह आसान है। सम्यक दर्शन, यह शब्द बहुत महत्व का है। सम्यक दर्शन, भली भांति दर्शन करना। तो ध्यान निष्ठ है, भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं, उनके लीला का ध्यान कर रहे हैं, लीला चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान के लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो यह है मैं समवस्थान, मेरे धाम को प्राप्त कर जाता है। और उस धाम के लिए दो विशेषण दे रहे हैं, ब्रह्म और कैवल्य। ब्रह्म का अर्थ होता है जो अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि ब्रह्म शब्द अर्थ तत्व सर्व बृहतम, जो सबसे बड़ा तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो एक आचार्य लिखते हैं कि पुरुषोत्तम विग्रहम एव अश्नुते लीलायाम प्रविष्टो भवति, मे समस्थानम अश्नुते। इसका अर्थ है कि मेरे लीला में प्रवेश कर जाता है। और तस्य परिच्छिन्नत्वं व्यावर्ति, और उसी भगवान के धाम का, उनके लीला के विषय में कह रहे हैं, शब्द दे रहे हैं ब्रह्म। इसका अर्थ है कि वो बृहद है, वो परिच्छिन्न नहीं है, कोई देश या कोई स्थान उसको आवृत नहीं कर सकता, घेर नहीं सकता। और कैवल्यम, कैवल्यम का अर्थ कर रहे हैं कि विकारित्वम व्यावर्तयति। कैवल्य का अर्थ है कि वह एक रस है, उसमें विकार नहीं है। इससे प्राकृत जगत में कोई भी चीज है तो उसमें विकार लगा हुआ है, वो जन्म लेता है, बढ़ता है, रुकता है, फिर कुछ फल उत्पन्न करता है, क्षीण होने लगता, नष्ट हो जाता है, इसको विकार कहते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है वहाँ ऐसा विकार नहीं है, वो एक रस है, इसीलिए कैवल्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में जो ब्रह्म शब्द है और कैवल्य शब्द है, तो इसको इसी रूप में समझना चाहिए कि ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान का धाम व्यापक है, वो देश या काल से परिच्छिन्न नहीं है। और कैवल्य का अर्थ है कि वे एक रस है, उसमें विकार नहीं है, उसमें ह्रास नहीं है। तो ऐसे भगवान के लीला का वह आस्वादन करता है। तो यह प्रोसेस दे रहे हैं, व्यक्ति कामना का त्याग करेगा, अपने स्वधर्म का पालन करेगा, तो उसका फल होगा कि भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और इसी विषय को आगे भगवान और बोल रहे हैं, तो इसको आप आगे सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद परपॉइंट में लिखते हैं कि वैष्णव का कंसेप्ट दूसरा है, ब्रह्म के विषय में और कैवल्य के विषय में। जो मायावादी लोग हैं तो उनके लिए कैवल्य सर्वोच्च चीज है, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो वैष्णव हैं वो तो कैवल्यम नरकायते, उनका जो कैवल्य है, मतलब कैवल्य का अर्थ है भगवान में तदाकार हो जाना, और वैष्णव लोग तो उसको नरक समझते हैं। जो ज्ञानियों के लिए सर्वोच्च प्राप्य वस्तु है, अभीष्ट है, उसको वैष्णव लोग नरक समझते हैं। कर्मी लोग स्वर्ग को अपना अभीष्ट मानते हैं, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वैष्णवों के दृष्टि में वह तो एकदम अस्तित्वहीन है। ऐसे एक श्लोक है, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, ये जो स्वर्ग है तो उसको तो आकाश पुष्प के समान एकदम अर्थहीन समझते हैं, अस्तित्वहीन समझते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसी अर्थ में लिख रहे हैं कि यहाँ जो ब्रह्म और कैवल्य का अर्थ है, वैष्णव विचारधारा के अनुसार इसी रूप में लीला लेना चाहिए कि ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान का लीला अपरिच्छिन्न है, और कैवल्य का अर्थ है कि भगवान का लीला, भगवान का स्वरूप यह विकार से रहित है। हरे कृष्ण। अब कुछ प्रश्न पूछिए तब शायद यह श्लोक क्लियर होगा। आप लोगों को इस श्लोक में कुछ कठिनाई लग रही हो तो प्रश्न कीजिए, तब स्पष्ट हो जाएगा। इसी से मैं थोड़ा पहले समाप्त किया हूं। आए थोड़ा और नजदीक आकर।
हाँ,
कैवल्य को नरक समझते हैं। हाँ, तो इस श्लोक में ऐसा तो नहीं कहा गया है कि ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कहाँ इसमें कहा गया है? आए
कर्मी लोग हैं, मायावादी लोग
हैं,
वो
हाँ,
ध्यान करते
हैं। हाँ, वो कैवल्य मतलब ब्रह्म में तदाकार हो जाते हैं। ब्रह्म में क्या सुख है मायावादी? क्या ब्रह्म के सुख को समझने के लिए दूसरे सुख को समझिए, एक कंपेरिजन करके ही समझ सकते हैं। देखिए, साधारण व्यक्ति है तो विषय के सुख के लिए ललायित है, भाग दौड़ कर रहा है। तो विषय का सुख मतलब खाने पीने का सुख है, स्पर्श का सुख है। तो यह इस संसार का जो सुख है वो इससे कई के गुना अधिक सुख स्वर्ग में है। लेकिन ब्रह्म सुख के आगे तो स्वर्ग का सुख भी फीका है। और इस संसार में जो सुख है, खाने पीने का सुख है, तो जो विषय का सुख है, इससे कई गुना उत्कृष्ट सुख साहित्य का होता है या संगीत का होता है। खाने पीने में जितना आनंद है, उससे कई गुना अधिक आनंद कोई कविता पढ़ करके आ जाता है। और अब इस सब सुख की ब्रह्म सुख के आगे कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। उसमें निश्चित रूप से सुख है, लेकिन जो भक्ति का सुख है तो वह इतना विशाल है तो ब्रह्म सुख गड्ढे के खारा पानी के समान लगने लगता है। कोई समुद्र है, एक स्थान पर समुद्र को रखिए और एक जगह कोई गड्ढा है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, वैसा लगता है। तो आपका ये जो प्रश्न है कि मायावादी लोग क्यों ब्रह्म सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए, इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं और उनकी चेतना अलग अलग है। और जैसी चेतना है उसके अनुरूप उनकी प्रवृत्ति होती है, जैसी श्रद्धा है उसके अनुरूप प्रवृत्ति होती है। श्रद्धा मयोयम पुरुष यो यो श्रद्धा स एव ही। वास्तव में यदि विभाजन किया जाए एक दृष्टि से तो जिसकी जैसी श्रद्धा है तो उसको उसी क्लास में रखा जाएगा। एक तरह से कहिए कि व्यक्ति के जो आइडेंटिटी है तो वह श्रद्धा पर ही है। अब उसी श्रद्धा को अंतःकरण कर्म वासना या कर्म ग्रंथि क्या क्या शब्द से देते हैं लगभग वो माने अंतःकरण श्रद्धा या सूक्ष्म शरीर या एक तरह का शब्द है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है। और श्रद्धा का निर्माण कैसे होता है, पीछे का जैसा संस्कार है जैसा कर्म है उसके अनुसार श्रद्धा का निर्माण होता है। और जो हमारा कर्म है इसके विषय में जीव गोस्वामी का शब्द है अनादि सिद्धम अनंतम चेति, ये अनंत है और अनादि सिद्ध है। तो मायावादी के विषय में ऐसा लिखा गया है कि वे कभी भगवान का अपराध किए हैं, वे अपराधी हैं, क्योंकि जो भगवान से विद्रोह करते हैं वो उनको जो गति मिलती है वो मायावादियों को वही गति पसंद है। ये जो असुर हैं भगवान उनको मारते हैं तो अन्यासी भगवान में लीन हो जाते हैं, उसी गति को ये मायावादी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि इनकी चेतना डेमोनिक है, आसुरिक है। अब इनका चाहे जो पीछे का हिस्ट्री रहा हो, इनकी चेतना आसुरिक है और इसलिए ब्रह्म का ध्यान करके चिंतन करके ब्रह्म में तदाकार होना चाहते हैं। हाँ, देखिए परमानेंट और नॉन परमानेंट का पहले एक कॉन्सेप्ट आप स्थापित कीजिए। ये देवता को अमर कहते हैं, इसका क्या आशय है? ये कंपैरेटिव शब्द है ना, मनुष्य के दृष्टि से मनुष्य की तुलना में उनका जीवन बहुत लंबा है इसलिए उनको अमर कह देते हैं। तो ऐसे इस हिसाब से देखने से हमारा जो स्टैंडर्ड है यहाँ के तुलना करने से अब वो ब्रह्म है को परमानेंट ही कह सकते हैं, लेकिन आरुह्य कृच्छ्रेण पतंत अधः, वो ब्रह्म में ब्रह्म पद को प्राप्त करके भी वे नीचे गिरते हैं। इसका अर्थ है कि वे नॉन परमानेंट है लेकिन वे बहुत अधिक काल तक जी उसी में डारमेंट अवस्था में पड़ा रहता है। तो एक तरह से भक्ति के सुख से बहुत दिन तक वंचित रह जाएंगे ना। तो अब एक दृष्टि से यहाँ के दृष्टि से देखेंगे तो परमानेंट है, एब्सोल्यूट दृष्टि से देखेंगे तो नॉन परमानेंट है। देखिए आप लोगों को यह श्लोक थोड़ा सा क्लिष्ट लगा होगा लेकिन पीछे से क्रम जोड़ करके इसको पढ़ेंगे तब यह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आइसोलेटेड इसका अर्थ करना थोड़ा कठिन हो रहा है। इसको पीछे प्रवचन भगवान का थॉट डेवलपमेंट क्या है, कैसे अपने विचार को बढ़ा रहे हैं, वो पीछे से जोड़ करके चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। जब विराग हो जाता है तो वह भगवान के स्थान का भोग करता है। मन जब विशद हो जाता है, विषय से रहित हो जाता है और भगवान के स्थान का भोग करता है तो वैष्णव दृष्टि से भगवान के लीला में प्रवेश करता है, परिकर बन करके लीला का सुख लेता है। और उस लीला के लिए दो शब्द है, ब्रह्म और कैवल्य। ब्रह्म का अर्थ है कि वो देश काल से परे है और कैवल्य का अर्थ है कि वह प्राकृत ह्रास से रहित है। यही इस श्लोक के शब्द के अनुसार अर्थ है। हरे कृष्णा।